हरे कृष्णा। राधा रसमाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमती राधा रानी मूर्तिमान आनंद स्वरूपा हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत सहचरी हैं, उनकी संगिनी हैं। वे भगवान कृष्ण के सर्वोच्च भक्त हैं, जो परम करुणामयी हैं। हमारे वक्ता श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी हमें श्री राधा रानी के जन्म व उनकी बाल लीलाओं से हमें अवगत कराएंगे तथा साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि किस प्रकार राधाष्टमी का यह उत्सव मनाया जाना चाहिए, जिससे और भी मधुरता व गहरी तन्मयता से हम भगवान की सेवा में संलग्न हो सकें। श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आए। लगभग 20 वर्षों से वे इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में वे इस्कॉन कारवार कर्नाटक के अध्यक्ष हैं व विभिन्न कॉलेजों व कंपनियों में मन पर नियंत्रण, मृत्यु के पश्चात जीवन, सफल शिक्षण कौशल व एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति पर भी सेमिनार लेते हैं। प्रभु जी भारत में गोवा, मुंबई, बेंगलोर एवं वृंदावन तथा विदेशों में जैसे केन्या, युगांडा, जाम्बिया व मल्लावी में भी सेमिनार लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं राधा रसमाला श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमाउं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब हम लोग आध्यात्मिकता की बात करते हैं या साधारण भाषा में कहें तो धर्म की बात करते हैं तो लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। उन भ्रांतियों में कुछ भ्रांतियां हैं जैसे श्री कृष्ण भगवान हैं या नहीं हैं, अन्य देवी देवताओं की क्या स्थिति है, ऐसी कई भ्रांतियां हैं। और उनमें से एक भ्रांति है कि श्रीमती राधा रानी कौन है। इस भ्रांति को लेकर कई विवाद फैले हुए हैं। लोग कई प्रकार की धारणाओं को बनाए हुए हैं। कुछ कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी केवल कृष्ण की प्रेयसी थी, कुछ कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी पत्नी थी, कुछ कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी बड़ी थी कृष्ण से और कुछ कहते हैं कि छोटी थी। ऐसे कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो राधा रानी कौन है इसको हमें बड़ी अच्छी तरह से जानना चाहिए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण को प्राप्त करने में हमें सहायता करेंगे, या फिर कहना चाहिए कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी कौन है, क्योंकि हमारा अर्थात हर जीव का श्रीमती राधा रानी से बहुत गहरा संबंध है। और इसीलिए हमें जान लेना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी कौन है। लेकिन श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है, अर्थात हमें ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है जो हमें सही परंपरा से प्राप्त हो रहा है, आचार्यों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और साथ ही साथ आचार्यों ने न केवल ज्ञान दिया है बल्कि हमें उसको समझने की शक्ति भी प्रदान की है अपनी कृपा के द्वारा। आध्यात्मिक ज्ञान को समझना इतना सरल नहीं है। ज्ञान तो बहुत उपलब्ध है। आज आप देखिए कितनी सारी पुस्तकें हैं, इंटरनेट है, आप जाइए और आप आराम से ढूंढिए, बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन वो बहुत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई से ठीक होते हैं, लेकिन डॉक्टर दवाई द्वारा हमें ठीक करता है, आध्यात्मिक दृष्टि में हम जब दवाई लेते हैं तो दवाई तब काम करती है जब डॉक्टर की इच्छा होती है या कृपा होती है। तो हमारे पास सारे पुस्तकें हो सकती हैं, सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो हमें समझ नहीं आएगा जब तक आचार्यों की कृपा ना हो। तो श्रीमती राधा रानी के तत्व को समझना, कौन है उनको जानना, ये केवल आचार्यों की कृपा से हो सकता है। और इसीलिए हमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को बढ़ाना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी को एक साधारण स्त्री हमें नहीं समझना चाहिए, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि इस जगत की कोई वो अति विशिष्ट महिला थी। नहीं, ना वो कोई साधारण महिला थी, ना इस जगत की अति विशिष्ट महिला हैं। तो फिर श्रीमती राधा रानी कौन है, इसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति अल्लादनी शक्ति रस्मात्। ऐसा कहा गया है कि राधा रानी कौन है, राधा और कृष्ण एक ही हैं। इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है। एकात्मवपी मतलब एक ही आत्मा है। राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, एक ही हैं, केवल आनंद लेने के लिए दोनों अलग हुए हैं। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी भगवान की शक्ति हैं और श्री कृष्ण शक्तिमान हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। और श्रीमती राधा रानी कौन है, वो क्या करती हैं? श्रीमती राधा रानी एक तरफ तो श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम सब की सेवाओं को, अर्थात हर जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने का कार्य श्रीमती राधा रानी करती हैं। इसीलिए हमने कहा कि हर जीव का श्रीमती राधा रानी से बहुत गहरा संबंध है। हमारी सेवा श्री कृष्ण तक तभी पहुंचती है जब श्रीमती राधा रानी उसको पहुंचाती हैं। और क्यों ऐसा है? क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान को आनंद देने वाली शक्ति हैं। श्री कृष्ण की असंख्य शक्तियां हैं, विविधैव श्रूयते, पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा। भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, लेकिन प्रमुखता उनको तीन भागों में बांटा जाता है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति अर्थात जीव, बहिरंगा शक्ति जिसका प्राकट्य भौतिक जगत के रूप में होता है, और अंतरंगा शक्ति ये तीन भागों में विभाजित है, संधिनी, संवित और अलादिनी। संधिनी अस्तित्व को प्रदान करती है, संवित ज्ञान को प्रदान करती है और अलादिनी ये आनंद को प्रदान करती है। और श्रीमती राधा रानी अलादिनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। श्रीमती राधा रानी का अस्तित्व है श्री कृष्ण की सेवा के लिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, कृष्ण प्रेम भावित जाहर चित्तेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसहाय। बहुत सुंदर बात कही गई है। क्या कहा गया? कृष्ण प्रेम भावित जाहर चित्तेन्द्रिय काय, जिनका चित्त, जिनकी इंद्रियां, जिनकी काया, जिनका पूर्ण अस्तित्व कृष्ण प्रेम भावित, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है। और हैं कौन वो? कृष्ण निज शक्ति, कृष्ण की निज शक्ति है राधा। और किस लिए उनका अस्तित्व है? क्रीड़ा रसहाय, क्रीड़ाओं में अर्थात श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी ने ये स्वरूप लिया है। तो इसीलिए जब श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ये इस जगत में आकर लीलाएं करते हैं, तो लोग जब इन पर आरोप लगाते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्रीमती राधा रानी हैं। जब श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत में होते हैं तो श्रीमती राधा रानी उनकी नित्य संगिनी के रूप में वहां रहती हैं। इस जगत में जब आते हैं श्री कृष्ण तो श्रीमती राधा रानी भी आती हैं। श्री कृष्ण अलग अलग रूप लेते हैं, राधा रानी भी अलग अलग रूप लेती हैं। जैसे कहा गया है कि श्री कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं। एते चांश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान हैं और बाकी सारे अवतार उनसे आते हैं। इसी तरह श्रीमती राधा रानी ये जब भी अवतार आते हैं तो उनकी नित्य संगिनी के रूप में उनके विस्तार आते हैं। इसका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। श्री कृष्ण की तीन प्रकार की प्रेयसियां हैं। पहली हैं लक्ष्मी देवी, दूसरी हैं महिषियां, महिषियां अर्थात जो द्वारिका में श्री कृष्ण की रानियां थीं, और तीसरी हैं गोपियां। और इन तीनों में गोपियों को श्रेष्ठ माना गया है। तो लक्ष्मी देवी, महिषियां और गोपियां, ये सब कृष्ण की प्रेयसियों में आती हैं और ये तीनों श्रीमती राधा रानी का विस्तार हैं। इस बात को समझना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि राधा अलग हैं, लक्ष्मी अलग हैं। कई कई बार ये प्रश्न आता है कि राधा और कृष्ण को साथ में क्यों पूजा जाता है। तो एक दृष्टि से राधा कृष्ण को ही साथ में पूजना चाहिए क्योंकि वे मूल हैं। अन्य सब लक्ष्मियां, शास्त्र तो इतना भी कहता है कि जो दुर्गा अवतार है वो भी श्रीमती राधा रानी से आते हैं। तो इसीलिए राधा रानी को कोई साधारण स्त्री नहीं मानना चाहिए। उनका शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं है। राधा का शरीर पूर्ण चिन्मय है। चिन्मय अर्थात जिसमें भौतिकता का स्पर्श मात्र भी नहीं है, कोई भौतिक तत्व नहीं है उनके शरीर में। उनका अस्तित्व, उनका मन, उनकी इंद्रियां सब कुछ चिन्मय है। चिन्मय अर्थात पूर्ण आध्यात्मिक। भौतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व में अंतर क्या है? भौतिक अस्तित्व ये नाशवान है, पांच तत्वों से बनता है और फिर ये पांच तत्वों में विलीन हो जाता है। भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति है, इसीलिए शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत शाश्वत नहीं है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, बड़ा सरल है समझने के लिए। जैसे एक मिट्टी से मटका बनाया जाता है, मिट्टी हमेशा रहती है, चाहे मटके के रूप में रहे या मिट्टी के रूप में, लेकिन मटका हमेशा नहीं रहता। तो भौतिक प्रकृति मिट्टी की तरह है और उस भौतिक प्रकृति से भौतिक जगत जो मटके की तरह है बनता है, और फिर मटका कभी रहता है थोड़े समय, फिर मिट्टी हो जाता है, लेकिन मिट्टी हमेशा रहती है। इसी तरह भौतिक प्रकृति हमेशा रहती है, लेकिन इसके जो पदार्थ हैं, इससे जो बनते हैं, वो रहते नहीं हैं। तो जैसे हम सबके शरीर हैं, ये भौतिक पदार्थों से बने हुए हैं, नाशवान हैं, थोड़े समय में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा शरीर श्रीमती राधा रानी का नहीं है। वो भगवान की शक्ति हैं और भगवान की शक्ति होने के कारण चिन्मय हैं, अलादिनी शक्ति हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी का वर्णन नहीं है। ऐसे कई अज्ञानियों का मानना है, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वे कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का कहीं वर्णन नहीं है। किसी एक व्यक्ति ने एक समय में कहा कि दरअसल पहले कहीं वर्णन नहीं था, करीब 700 वर्ष पूर्व किसी ने ये नाम ले लिया और लोग स्वीकार करते हैं। देखिए हम सब की कितनी मूर्खता है कि हम ऐसी बात को स्वीकार कर लें। क्यों है? क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, हम देखते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं आचार्यों की वाणी को। इसीलिए शास्त्र क्या कहता है, क्या शास्त्र में श्रीमती राधा रानी का नाम है या नहीं है? तो ये जान लीजिए कि एक जगह नहीं, कई स्थानों पर श्रीमती राधा रानी का नाम है। अगर हम वेदों की बात करें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब में राधा का नाम है। हम अगर उपनिषदों की बात करें तो गोपाल तापनी उपनिषद में नाम है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली ये श्री कृष्ण के दोनों तरफ रहती हैं, एक तरफ चंद्रावली और एक तरफ राधिका। तो ये नाम बड़ा स्पष्ट है। गोपाल तापनी उपनिषद ये भी कहता है आगे कि श्रीमती राधा रानी ही सारी लक्ष्मियों की, दुर्गा की, गोपियों की स्रोत हैं, सब कुछ उनसे आता है। तो ये भी कहा गया है। और फिर पद्म पुराण में वर्णन है जहां राधा कुंड का वर्णन आता है, यस्य राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा। तो जैसे श्रीमती राधा रानी प्रिय हैं कृष्ण को, ऐसे ही उनका कुंड राधा कुंड भी बहुत प्रिय है। तो ये पद्म पुराण में भी वर्णन आता है। अगर हम श्रीमद् भागवतम देखें तो कहा गया है कि भागवतम ने तो कहीं श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है, कृष्ण की इतनी लीलाएं की कृष्ण ने, वहां पर सारे वर्णन है लेकिन राधा रानी का वर्णन नहीं है। तो क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता शुकदेव गोस्वामी, इन्होंने गोपियों का नाम नहीं लिया। नाम इसलिए नहीं लिया कि अगर वो नाम ले लेते तो भाव विभोर हो जाते और फिर कथा नहीं कह पाते। परीक्षित के पास केवल 7 ही दिन थे। अगर मान लीजिए शुकदेव गोस्वामी कहते कहते भाव विभोर हो जाते और भाव अवस्था में अपनी बाहरी चेतना खो बैठते तो फिर उतना समय कथा नहीं हो पाती। तो इसको ध्यान में रखते हुए शुकदेव गोस्वामी ने नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी भागवतम में एक स्थान पर संकेत मात्र किया गया है, अनयाराधितो नूनम, उस गोपी का वर्णन किया गया है, अन्य गोपियां करती हैं, जिसने सबसे अच्छी आराधना श्री कृष्ण की है। तो इसीलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी का नाम कहीं शास्त्र में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितनी कथाएं शास्त्रों में हैं श्रीमती राधा रानी के विषय में। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी ये श्री कृष्ण को आनंद और प्रेम प्रदान करती हैं। ये जो सारा आध्यात्मिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत का केंद्र है परम भगवान। और जब वो परम भगवान, वो परम शक्ति अपना विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी में, तब फिर प्रेम का प्राकट्य होता है या फिर परम आनंद का प्राकट्य होता है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी ये भगवान की शक्ति हैं। ऐसा नहीं मानना कि ये साधारण स्त्री हैं, साधारण या अति विशिष्ट स्त्री हैं इत्यादि, लेकिन ये जानना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी भगवान की शक्ति हैं। और इसीलिए जब भगवान इस जगत में आते हैं, आध्यात्मिक जगत में नित्य संगिनी हैं श्रीमती राधा रानी, लेकिन जब इस जगत में आते हैं तो लीला मात्र के लिए श्रीमती राधा रानी जन्म अलग लेती हैं, फिर श्रीमती राधा रानी बड़ी होती हैं, लीलाएं होती हैं। और ऐसा भी होता है कि श्री कृष्ण के साथ विवाह होने वाला है, फिर विवाह नहीं होता, रोक दिया जाता है, फिर विवाह किसी और से होता है। तो ये सब सुनकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो सारी साधारण लीलाएं हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी उनके कर्म हैं वो साधारण नहीं है। और क्यों नहीं है भगवान के कर्म साधारण? जैसे हम कर्म करते हैं वैसे भी वो ही करते हैं, तो उनके भी कर्म साधारण होने चाहिए? नहीं, भगवान के कर्म साधारण नहीं है, क्योंकि जो भी भगवान करते हैं वो धर्म है। हमें धर्म सीखना पड़ता है, हमें धर्म समझना पड़ता है, धर्म का पालन करना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण जो वो बोलते हैं वो धर्म है, जो वो करते हैं वो धर्म है, उन्हें धर्म सीखना नहीं पड़ता। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि जिस प्रकार श्री कृष्ण परम भगवान है, उनकी स्थिति परम है, उसी तरह श्रीमती राधा रानी भी परम अवस्था में हैं। वे उनकी सबसे श्रेष्ठ भक्त कही जाती हैं, क्योंकि वे आराधना में सबसे श्रेष्ठ हैं। और वैसे भी गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने यह समझाया है कि हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो श्रीमती राधा रानी के माध्यम से करते हैं। इसीलिए जब हम मंत्र भी कहते हैं, जैसे महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये मंत्र भी कहते हैं तो पहले हरा संबोधन आता है, हरा अर्थात श्रीमती राधा रानी। तो पहले राधा रानी को संबोधित करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो प्रार्थना श्रीमती राधा रानी से है, क्योंकि हमारी सेवा श्रीमती राधा रानी कृष्ण तक ले जाती हैं। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी, इनकी अवस्था, इनकी स्थिति को समझना, इनके स्थान को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कौन है वास्तव में ये? तो ये है श्री कृष्ण की शक्ति। और अगर श्री कृष्ण अपनी शक्ति में आनंद लेते हैं तो इसमें कोई निंदनीय कार्य नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अपनी शक्ति, उनका प्राकट्य ही हुआ है, श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए। और इसीलिए उस कार्य में श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं, सेवा में सर्वश्रेष्ठ हैं, श्री कृष्ण को आनंद देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, जीवों पर कृपा करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है, तो जीवों पर कृपा करने में श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी के तत्व को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज को तत्वतः समझा जाता है, जैसे भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि तत्वतः समझना चाहिए, तो जब तत्वतः समझा जाता है तो हृदय में विश्वास बढ़ जाता है। तो इसलिए ये जानिए कि श्रीमती राधा रानी कोई साधारण व्यक्ति, साधारण स्त्री, अति विशिष्ट स्त्री नहीं है, वो शक्ति है भगवान की। और उनका प्राकट्य, वो अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। जब श्री कृष्ण रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो वो सीता के रूप में आती हैं, जब श्री कृष्ण विष्णु का रूप लेते हैं तो वो लक्ष्मी के रूप में आती हैं। ऐसे जो भी अवतारों में नित्य संगिनियां हैं वो श्रीमती राधा रानी का अवतार है। तो इसीलिए मानना चाहिए कि जैसे श्री कृष्ण मूल हैं सारे अवतारों के, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी भी मूल हैं सारी नित्य संगिनियों की। और इस भाव में, इस ज्ञान में रहकर हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, हमें उनसे पूजा, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, इस भाव में रहकर कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। इसीलिए अगर मन में कोई भ्रांति हो श्रीमती राधा रानी के प्रति, तो आज उसको निकाल दीजिए, कोई भ्रांति नहीं रखिए। ये भ्रांति कि श्रीमती राधा रानी केवल प्रेयसी थी, केवल पत्नी थी, या उनका नाम नहीं है शास्त्रों में इत्यादि, ये सारी भ्रांतियों को समाप्त कीजिए। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की नित्य संगिनी है, आध्यात्मिक जगत में वो नित्य युगल किशोर, किशोर किशोरी के रूप में वो वहां पर हैं। और जब यहाँ लीला मात्र के लिए आते हैं तब लीला के लिए कुछ अलग अलग होना, कुछ लीलाओं को करना, इसलिए वो करते हैं। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी की स्थिति को समझकर जब हम श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तब हमें आध्यात्मिक प्रगति होती है। और ये प्रगति होगी, असली प्रगति हमारी क्या है? इस भौतिक जगत की चीजों को प्राप्त करना असली प्रगति नहीं है। असली प्रगति है कि हम हमारी चेतना को इस समय जो इस भौतिक जगत में फंसी हुई है, इन चीजों में लगी हुई है, उससे ऊपर उठाएं, श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों तक पहुंचाएं। ये सच्ची प्रगति है, और वो तब होगा जब हम ये जान लेंगे कि श्रीमती राधा रानी कौन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।